वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह सजदा की आयत क्रमांक 20 और 21 की तिलावत सुने।
और वे लोग जिन्होंने अवज्ञा की तो उनका ठिकाना आग है। जब भी वे उसमें से निकलना चाहेंगे तो उसी में लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि उस आग के दंड का स्वाद चखो जिसे तुम सदैव झुटलाते रहे थे। और हम अवश्य ही प्रलय के उस बड़े दंड से पहले उन्हें इसी दुनिया में छोटे दंड का मज़ा चखाएंगे कि शायद वे सही मार्ग पर लौट आएं।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ईश्वर की दृष्टि में ईमान वाले व अवज्ञाकारी एक समान नहीं हैं। ईमान वाले अपने सत्कर्मों के कारण स्वर्ग के पात्र और वहीं उनका स्थायी ठिकाना होगा। ये आयतें कहती हैं कि जो लोग ईमान का दावा करते हैं किंतु व्यवहारिक रूप से ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते बल्कि सदैव उसकी अवज्ञा करते रहते हैं, वे नरक में जाएंगे और उससे बचने का उनके पास कोई मार्ग नहीं होगा।
अलबत्ता इस संसार में भी उन्हें विभिन्न रूपों में दंडित किया जाता है ताकि शायद वे सुधर जाएं और अपने बुरे कर्मों से तौबा कर लें और प्रलय के दंड में ग्रस्त न हो। लेकिन प्रलय में तौबा का मार्ग बंद है और वापसी की कोई संभावना नहीं है।
हदीसों में आया है कि संसार में मनुष्य को जो कठिनाइयां, रोग और दुख झेलने पड़ते हैं वे एक प्रकार का ईश्वरीय दंड है ताकि मनुष्य सजग हो जाए और अपने पापों, बुरे कर्मों व अपराधों को छोड़ दे।
इन आयतों से हमने सीखा कि कभी कभी पाप और बुरे कर्म मनुष्य को इस प्रकार अपने घेरे में ले लेते हैं कि मानो उसे प्रलय पर विश्वास ही नहीं है।
ईश्वरीय दंड केवल प्रलय से विशेष नहीं है बल्कि संसार में भी ईश्वर कुछ लोगों को दंडित करता है। ये स्वयं अपने आप में एक अनुकंपा है कि गलती करने वाला मनुष्य तौबा करके सही मार्ग पर लौट आए।
ईश्वर के दंड भी मनुष्य के प्रशिक्षण के लिए हैं और इनका स्रोत भी ईश्वरीय दया है।
आइए अब सूरह सजदा की आयत क्रमांक 22 की तिलावत सुने।
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ।
اور اس سے بڑا اتیاچاری کون ہوگا جسے اس کے پالنہار کی آیتوں کے مادھیم سے نصیحت کی جائے لیکن وہ پھر بھی ان سے منہ موڑ لے؟ نشچے ہی ہم اپرادھیوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔
इस आयत में ईश्वर उन लोगों को जो वास्तविकता की पहचान के बावजूद ईश्वर की आयतों और आदेशों से मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें झुटलाने की कोशिश करते हैं ऐसे अत्याचारी बताता है जिन्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। कुरान मजीद की संस्कृति में अपने आप पर अत्याचार और कुफ्र व अपराध में ग्रस्त होना संभावित रूप से दूसरों पर अत्याचार से भी बड़ा हो सकता है क्योंकि यही दूसरों पर अत्याचार का स्रोत बन जाता है।
ईमान वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर अत्याचार के बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो सत्य को छिपाता है और कुफ्र का मार्ग अपनाता है वो बड़ी सरलता से दूसरों के अधिकारों की अनदेखी करके उन पर अत्याचार करता है।
इस आयत से हमने सीखा कि द्वेष व हठधर्मी की भावना इस बात का कारण बनती है कि जब मनुष्य को गलत बात पर टोका जाता है तो वो गलत काम छोड़ने के बजाय उस पर आग्रह करने लगता है और कीचड़ में अधिक धंसता चला जाता है।
अपराधियों को टोकने और चेतावनी देने के बाद कभी कभी कड़ाई की भी आवश्यकता होती है।
आइए अब सूरह सजदा की आयत क्रमांक 23, 24 और 25 की तिलावत सुने।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ।
और निश्चय ही हमने मूसा को आसमानी किताब प्रदान की थी, अतः उससे मिलने और ईश्वरीय आयतें प्राप्त करने के बारे में आप किसी संदेह में न रहें। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए मार्गदर्शन बनाया था, और हमने उनमें से ऐसे इमाम व नेता बनाए जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे जब वे लोग संयम से काम लेते थे और हमारी आयतों पर विश्वास रखते थे। निश्चय ही प्रलय के दिन आपका पालनहार उनके बीच उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वे मतभेद करते रहे हैं।
ये आयतें आरंभ में पूरे इतिहास में ईश्वरीय पैगंबरों और आसमानी किताबों के भेजे जाने की प्रक्रिया की ओर संकेत करती हैं और कहती हैं कि निश्चित रूप से हमने ही मूसा को किताब प्रदान की थी ताकि वे बनी इसराइल का मार्गदर्शन करें और उन्हें फिरौन के चंगुल से मुक्ति दिलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जाति बनी इसराइल के कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और फिरौन से संघर्ष में संयम से काम लेते हुए अंत तक डटे रहे। उन्हें ईश्वर और तौरात के वचनों पर विश्वास था और इसीलिए वे दुश्मनों को नियंत्रित करके अपने समाज के नेतृत्व के चरण तक पहुँचे। इस प्रकार के लोग ईश्वर की किताब और ईश्वरीय पैगंबर के आदेशों के अनुसार समाज पर शासन करते थे और ईश्वरीय आदेशों को लागू करते थे।
ये सच्चे ईमान वाले जो अपने ईमान और प्रतिरोध की छाया में सत्ता तक पहुँचे थे अपनी या लोगों की आंतरिक इच्छाओं के अधीन नहीं थे, बल्कि वे ईश्वर के आज्ञा पालक थे और उनके काम का आधार ईश्वरीय आदेश थे। वे अपनी राय या लोगों के विचारों पर ईश्वरीय आदेश को प्राथमिकता देते थे और आंतरिक इच्छाओं के पालन के बजाय ईश्वर की किताब और ईश्वरीय कानूनों के आधार पर शासन करते थे।
अलबत्ता बनी इसराइल के लोग भी मतभेदों में ग्रस्त थे जिसके चलते उनके बीच फूट पड़ जाती थी। इन मतभेदों का मुख्य कारण सत्य से दूरी और अपनी आंतरिक इच्छाओं का पालन था। इसीलिए ईश्वर अत्यंत कड़े और चेतावनी पूर्ण स्वर में कहता है कि इस गुट के लोगों को जो लोगों के धर्म में फूट का कारण बन रहे हैं जान लेना चाहिए कि प्रलय में उनका हिसाब ईश्वर के हाथ में है और वो न्याय के आधार पर उनका हिसाब किताब करेगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि पैगंबरों को भेजे जाने की प्रक्रिया इतिहास में निरंतर जारी रही है। ये प्रक्रिया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले भी थी, अतः आसमानी नेताओं के बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए।
ईश्वर के मार्ग में ईमान, विश्वास व प्रतिरोध नेतृत्व की मूल शर्तों में से है। मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विश्वास होना चाहिए और अंतिम चरण तक उस पर डटे रहना चाहिए ताकि समाज के नेतृत्व की आवश्यक योग्यता का पात्र बन सके।
धार्मिक नेताओं को कभी भी अपने काम और लोगों के मार्गदर्शन से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मतभेद हमेशा से रहा है।